لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والجل لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والجل لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والجل لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله. چند باتیں جو حج پہ جانے والوں کے نام کریں کیا. اب دیکھیے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نا تو ہم اس کی اتنی ایک شکل بنا لیتے ہیں سخت قسم کی کتابیں، فلاں چکر میں یہ، فلاں میں یہ، کہ ہم اس کی روحانیت سے محروم ہو جاتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ جو بھی حج پہ جا رہے ہیں یا جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، لیکن کچھ لے کے آنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. یہ سفر تو شروع ہو جاتا ہے تیاری کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں کہ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے تو پہلی چیز آپ دیکھیں کہ تیاری جب کرتے ہیں. بہت سارے ساتھی اس وقت حج کی تیاریوں میں ہوں گے. سوچئے ذرا، ایک سفر پہ جا رہے ہیں 10 دن، 12 دن، 15 دن، اور کتنی تیاریاں. بچے کہاں رہیں گے، گھر کون رہے گا، 100 قسم کی چیزیں. کیا یہ سفر ہمیں ایک اور سفر کی یاد نہیں دلاتا کہ ہم نے ایک ایسے سفر پہ بھی جانا ہے کہ جہاں تیاری کا وقت نہیں ملے گا، ٹکٹ اس کی پہلے سے بک نہیں ہوگی، کوئی اس کے لیے ہمیں مہلت نہیں ملے گی کہ اپنی پسند سے ٹائم چوز کر لو، پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، پھر پیچھے ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. سفر سے آخرت کے سفر کو سوچنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح ہم نے ایک دن نکل جانا ہے اس دنیا کے جھنجھٹ سے. بڑی خوبصورت ایک آرٹیکل ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یعنی فلائٹ الجنائز کی طرف سے. ایک ایسی فلائٹ میں ہم سب سوار ہونے والے ہیں کہ جس کو ہم نے سب نہیں سوار ہونا ہے، کوئی ٹکٹ دے نہ دے، ملے نہ ملے، اپنے وقت پہ جانا ہے. لیکن فکر کی ضرورت نہیں ہے، بکنگ ہوئی ہوئی ہے پہلے سے. جگہ جو جہاں ملے گی، جہاں کی کوشش کی ہوگی، جتنی محنت ہوگی دنیا میں. تو لہٰذا ان تیاریوں میں آخرت کی تیاری کو نہ بھولیں. دوسری چیز ہے کہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے تیاری میں. بعض لوگ حج کے سفر کو ایک ایسا سفر سمجھتے ہیں جیسے دوبارہ دنیا میں آنے کا سفر. نئے کپڑے، نئی جوتیاں. میں نے ایک بہن تھی، ان کو دیکھا نئے سوٹ کیس تک لا رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو ہیں؟ کہہ رہی ہاں وہ تو ہیں، لیکن اب اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو نئے سوٹ کیس ہونے چاہیے. یہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، اسراف سے بچنا ہے. بعض لوگ تیاری کرتے ہیں تو بڑے سفید چمکتے ہوئے جوڑے رکھتے ہیں. ہم نے ایک سفر کیا ہے، ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی یعنی ریلیٹیو ہیں، ہماری بہت ہی پیاری قریب کی رشتہ دار ہیں، تو وہ بڑے اہتمام سے یعنی انہوں نے اس کے اندر اپنا وائٹ سوٹ چکن کا بنا بنایا، بڑا خوبصورت. کہیں گے یہ تو میں عید والے دن پہنوں گی نا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پپو رکھ لیں. آپ بھی ہم پہلے گئے ہوئے تھے، وہ نہیں گئی تھی، اور پہلی دفعہ جانے والوں کو شوق بھی بہت ہوتا ہے، اور سارے کپڑے جو بھی بڑے کلف لگے ہوئے وائٹ. لیکن وہاں جب مینا کے اندر تھے اور جب عید کا دن ہے، وہ تو ہم نے کہا پپو کدھر ہے وائٹ جوڑا، کہتی میں نے خراب تھوڑی کرنا ادھر پہن کے. یعنی اتنا وقت نہ لگائیں ایسی چیزوں پہ جو ہے. میں اپنے لیے کیا کرتی ہوں، میں اس لیے یہاں یہ بات اس وقت کر بھی رہی ہوں کہ شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. نرم کپڑے پہنے ہوئے، خوب گھسے ہوئے کپڑے جو آپ کو پہننے میں بھی تکلیف نہ ہو، اور لان کے بیسٹ رہتے ہیں یا پیور کاٹن کے. گرمی بھی وہاں لگتی ہے بہت، بے شک سردیاں بھی ہیں لیکن پسینے دھوپ. ریشمی کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی بدبو بھی دیتے ہیں، پھر جب 3 دن آپ وہاں غسل نہیں کر پاتے، موسلی نہیں جگہ ملتی، تو ریشمی کپڑوں سے ایک بدبو آتی ہے. تو بہتر یہ کہ پرانے کپڑے لیں. میں تو جب بھی جاؤں اللہ تعالیٰ لے جائے، اپنے خوب پہنے ہوئے لے جاتی ہوں اور واپسی پہ وہیں دے آتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے لانے کی. اور نرم کپڑے ہوتے ہیں، اور 3 سوٹ یا 4 سوٹ بہت ہوتے ہیں. یہ سوچا ہوتا ہے کہ ایک دھوئیں گے 2-3، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیگ میں بس اوپر والا دھلتا ہے اور وہی نکلتا ہے، اور وہ نیچے والے 2 بھی ایمرجنسیز میں کام آتے ہیں. लेकिन वहां पूरा वर्क जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि हम करने क्या है। फिर दूसरी चीज आप देखिए कि जब इंसान तैयारियां पूरी कर ले और उसमें पीछे का भी सारा ख्याल करते हुए बैठेगा, तो फिर उसके बाद अगला मरहला क्या होता है इंसान का कि उसने यानी एहराम बांधना। मर्दों के लिए खास तौर पे जब लोग जाते हैं तो जहाज में से एहराम बांधा जाता है, तो वो दो चादरें पहनते वक्त उन उन चादरों को भी याद रखना है जो हम में से हर एक ने पहननी है। एहराम पे ना मोती लगे होते, ना सितारे, ना सलमा, ना दबका, ना मुकेश कॉटन के। इसी तरह के सफेद कोरे कफन में हमने लिपटना, उसको याद रखना। ये चादरें क्यों पहनाई जाती हैं? इधर फैंसी कपड़े, घर में बेशुमार कपड़े, वो दो कपड़े में क्यों कि देखो जिंदगी ऐसे भी गुजर सकती है। साथ तीन चार जोड़े लेके जा रहे हो ताकि जब वापस आओ तो ये सीख के आना कि जब मेरा वक्त इसमें गुजर सकता है तो फिर इससे ज्यादा अपनी जिंदगी के अहम वक्त को दूसरे कामों में क्यों रखूं। तो लिहाजा उसकी भी रूहानियत कायम रहे। औरतों के लिए कोई खास लिबास की जरूरत नहीं होती, आपके अपने आम मामूल के कपड़े जो है वही आपका एहराम होता है। सर पे अगर आप यानी अपने इस तहफ्फुज़ के लिए कि आपके बाल ना टूटे या अगर कंघी नहीं करते तो बाल बिखरेंगे, अगर आप कोई भी स्कार्फ ले लेते हैं जो टाइट है तो अच्छा है, लेकिन आम स्कार्फ आपका जो लिबास है वही आपका एहराम हो जाता है इसमें। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि जरूरत पड़ती है वो क्या होती है, जो हम पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जितनी दफा लब्बैक पढ़ेंगे ना वहां सोचिएगा कि ये एक वादा है। यानी आप जो ही कहते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तो आपके लाशऊर में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनने लगती है जिसने सफेद चादरें पहनी हुई है और दो चादरों में लपेटा। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से महरूम हो जाते हैं कि मैं कह क्या रहा हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। क्या वाकई दिल से भी हाजिर हूँ? तूने पुकारा मैं आ गई, तूने बुलाया मैंने कबूल कर लिया। क्या मेरी ये लब्बैक जिंदगी के दूसरे मामलों में भी होती है? जब अल्लाह ताला मुझे और नेकियों के लिए बुलाता है तो क्या मैं लब्बैक कहती हूँ या ला लब्बैक? ये अज़्म करके आना अपने साथ। ये सिर्फ एक गिनती नहीं, एक पहाड़ा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई पोइम नहीं, ये एक बंदा मोमिन की कमिटमेंट है कि अल्लाह आज मैं तेरे साथ ये इजहार करती हूँ कि तूने मुझे जिस नेकी के लिए भी बुलाया मैं नो नहीं कहूंगी। अल्लाह मैं हाजिर हूँ, दिल से हाजिर हूँ, दिमाग से हाजिर हूँ, और उसके एक एक लफ्ज पे आप गौर करेंगे, ला शरीक अलग, तेरा कोई शरीक ही नहीं, यानी तेरे सिवा मैं और किसी की बात नहीं मानूंगी। ये क्या बताता है कि वाकई जिंदगी के अंदर इंसान बंदा मोमिन की तो पूरी जिंदगी इस बात का दर्स है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इतना रंग क्यों है कि उन्होंने हर मौके पर यही कहा कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक अलग लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक, सारी तारीफें तेरी हैं और नेमतें भी तेरी हैं, वल मुल्क बादशाही भी तेरी है, ला शरीक अलग। ये कहना बंदे का रब के साथ ताल्लुक मजबूत करना हो, ऐसा ना हो कि जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए और इंसान अपने आप को कुछ तब्दीली ना महसूस करे। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब वहां इंसान उतरता है जद्दा एयरपोर्ट पे, तो बहुत ही आपको आपकी तवक्कात से खिलाफ हालात पेश आएंगे। ये मैं आपको भी बता देती हूँ, यानी आपकी सारी रूहानियत मसख होने लगती है, लंबी लंबी इंतजार की लाइनें होती हैं, हाजी कैंप्स होते हैं, शहर से दूर होते हैं, बाज दफा आपकी पसंद का खाना नहीं होता, बाज लोग वहां सब्र का दामन छोड़ने लगते हैं, जा जाके लड़ रहे हैं हमारी बारी कब आएगी, हम ये थे, अब मुझे नहीं पता कि हालात कैसे हैं, कैसा आपको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी के लिए वहां तैयार रहिए। आपने सबर का दामन नहीं छोड़ना, आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ अभी 500-600 लोग खड़े हैं और मेरी बारी उसके बाद आएगी, लाइनों में लगना, धक्के देना, गुस्सा करना बेहतर नहीं? कोई एक बंदा वहां चला जाए और आप अपने वक्त का इस्तेमाल करें, सही दुआएं, किताबें, बैठे पढ़े। आप अगर ये घर से सोच के जाएंगे ना कि मेरा एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट की मैंने कदर करनी है, तो मेरा ख्याल है कि अपने डॉलर से भी ज्यादा उसको संभाल के रखेंगे। कोई फालतू वक्त बातों में, इधर की उधर बाजारों में, शॉपिंग में, मॉल्स में, यहाँ थोड़े हैं। हम जहाँ दुनिया में रहते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे दिल में तो ये हिरस ही नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ जाके क्या खरीदेंगे। बाज़ लोग यहाँ बड़े तमाम से जाते हैं, लेकिन वहां जाके बाजारों में वक्त जाया करना, वहां जाके भी जमात की नमाज नहीं नसीब होती, रास्ते में ज्वेलर्स की दुकानों पे। बाज़ लोग पहले से सोचे होते हैं इस दफा जाऊंगी तो ये चूड़ियां लेके आऊंगी, इस दफा जाऊंगी तो वो। तो फिर वही बात है कि रब के पास डायमंड्स भी हैं और पत्थर भी हैं। जो पत्थर लेके आके खुश हो जाएगा कि मैंने ये सोने की सूरत में पत्थर ले लिए, वो उसका सौदा। लेकिन जो वक्त को कीमती समझते हुए वहां इस्तेमाल करेगा, इन चीजों से अपने आप को दूर रखेगा, तो उसका दिल वहां ज्यादा अच्छा गुजरेगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आप उमरा करेंगे, पहला जाते ही आप घर के, कोशिश यही होती है इंसान की कि थकन उतारे और फिर हरम के अंदर जाके उमरा करे। तो जब पहली दफा आपके निगाहें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए घर को देखें, तो जरूर वो सारी चीजें सोचिएगा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। जिस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो घर बनाया था, उस दिन के घर में और आज के इस खाना काबा में कोई कदर मुश्तरक लगती है? मिट्टी का कच्चा घर, और आज वो आके देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी मानेंगे भी नहीं कि ये मैंने बनाया था। लेकिन इतना रंग क्यों लगा? इखलास, इखलास के साथ की हुई कोशिशें इसी तरह रंग लाती हैं। इसीलिए कहती हूँ कि जो काम अपने हिस्से का करते जाए। कच्ची ईंट हाथ में तो वो लगा दें दीन के नाम पे, पक्की है तो वो लगा दें, पत्थर है तो लगा दें, टाइल है तो लगा दें, लेकिन अपना हिस्सा डाल के कह दें कि अल्लाह तू इन घरों को आबाद रखना, इन जगहों को आबाद रखना। आज खाना काबा के अंदर जितना इज्तेहाम है, इतने लोग तो टोटल पूरी दुनिया में नहीं होंगे उस दौर वक्त में जितने आज मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दिया, अल्लाह ताला ने उनको ये सिला दिया उनकी उन दुआओं का कि अल्लाह इस घर को बसा दे। याद करिए उनको, उनकी जिंदगी से जो सबक आपने सीखे हैं इनको साथ लेके जाए। अगर ये नोट्स जो आपने लिखे हैं अगर इनको साथ रखेंगे तो वहाँ एक एक चीज पे नजर पड़ेगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आप तवाफ करेंगे, पहला तवाफ, अब रश में क्या कैफियत है? बास दफा के करीब जगह मिलती है, नहीं मिलती तो कोई हर्ज नहीं, इतनी दूर से गए हैं ऊपर चले जाइएगा। बरामदों में आसानी से तवाफ होता है, ठीक है आप 6 तवाफ की बजाय 1 भी कर लेंगे, आप 1 घंटे की बजाय 4 घंटे में करेंगे, लेकिन रूहानियत के साथ करें। मर्दों में जाके धक्के खाना और धक्कम पेल और सिर्फ ये सोच के कि मैं करीब रहूं और मैं जाली को हाथ लगा लूं और मैं देखूं, मेरा ख्याल है कि हज के दिनों में तो औरतों को इससे बहुत अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पर जब तवाफ इफाजा करेंगी आप हज के बाद का जो होता है उसमें तो हर एक ने करना ही होता है, तो बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करते। जितना भी दूर रहते हुए अपने जिस्म की हिफाजत करते हुए अपने आप को करेंगे वो बेहतर होगा। हाँ, तवाफ में क्या करना है, ये क्या है, 7 चक्कर क्या है? इंसान को बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का मरकजी नुक्ता भी रब की जात हो। वहां तो हम एक काले घर के दरमियान चक्कर लगा के आ जाते हैं, लेकिन ना तो हमारे दुनिया में इधर वापस आने के बाद हमारी सोचों का रुख मुड़ता है उस जात की तरफ, ना हमारी पसंद ना पसंद बदलती। हर चक्कर के साथ सोचिएगा कि इस चक्कर में मैंने क्या रब के साथ कमिटमेंट की, क्या नियत की, क्या मांगा। कोई खास दुआ नहीं है कि ये मांगे वो मांगे। हाँ, नबी सल्लम जो मांगा करते थे, 2 दुआएं हैं जब शुरू करते मुकाम इब्राहिम से लेके आगे तक जहां से यानी तवाफ शुरू होता है, तो उसमें तीसरा कलमा जिसको आप कहते हैं सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और इसके साथ फिर अपनी दुआएं भी, और फिर उसके बाद रुकने यमानी से वापसी तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। लेकिन अब इंसान कुछ अपने लिए भी मांगना चाहता है, कुछ भी मांगे। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि जैसे ये मैं अपना अमल बता रही हूँ, अल्लाह ही, ये किसी के लिए हुज्जत नहीं है, आसानी के लिए कह रही हूँ कि आप अपनी नियत कर लिया करें। मतलब पहला तवाफ जो है ना, जैसे पहला चक्कर है तो उसमें मिसाल है कि इंसान अपने लिए मांग ले, मगफरत मांगे, बख्शिश मांगे, दुनिया की चीजें मांगे, बीमार, पूरे चक्कर में अपने लिए दुआएं कर ले। फिर उसके बाद अगला चक्कर माँ बाप की नियत करे, उनकी दुआएं, उनकी बीमारियां, उनकी मगफरत, उनकी परेशानियों से। फिर इसी तरह तीसरा चक्कर जो है वो शौहर बच्चे, फिर चौथे चक्कर में खानदान, फिर एक में मुसलमानों के लिए, यानी कुछ भी अपनी सहूलत के लिए बांट लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए आपने मांग लिया। इसी तरह किसी एक तबाक में अपने दोस्तों के लिए आप दुआएं कर सकते हैं सिर्फ इस तस्कीन के लिए कि आपने सब कुछ मांगा है, लेकिन वो भी फिर भागना सिर्फ दौड़ना ही ना हो, उस मकसद को जहन में रखें कि यहाँ क्यों आई हूँ। यकीन करें मैं जब वहां जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ नई चीज तो नहीं मुझे मिली, बल्कि पहली दफा जब मैं गई और मैं तो परेशान हो गई और मुझे लगा कि मैं तो मुनाफिक हूँ, कुछ इस बात नहीं। मेरा दिल करे यहाँ ये सारे लोग क्यों हैं, कब मैं अपने घर आराम से हूँ और मैं अकेले में अल्लाह तआला से मांगू, तन्हाई में मांगना, अकेले में मांगना, मोहब्बत से मांगना, कोई आपको देख नहीं रहा, और वहां जाके तो इतना शोर और इज्तहाम है, तो मेरे दिल में खौफ आने लगा कि मेरे दिल में ऐसे जज्बात क्यों पैदा हो रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि मैंने जो चीज आखिरी दिन वहां महसूस की, बहुत रोना भी आता है फितरी तौर पे बंदे को आते हुए, लेकिन मेरे दिल को इतनी खुशी थी। फिर क्या हुआ, अल्लाह तो मेरे साथ ही है ना, इस घर से दूर जाऊंगी ना, अल्लाह ताला तो साथ है ना, मैं वहां आराम से उससे मांग लूंगी, मैं वहां बात कर लूंगी। तो वहां रहते हुए भी उस घर के गिर्द नहीं घूमना, फल्याबुदु रब्ब हाज़ल बैत, उस घर के रब की इबादत करनी है। बाद लोग खाना काबा के पर्दे से लटकने की कोशिशें, चुरा चुरा के वो रेशम के टुकड़े लाते हैं, नहीं करना ऐसा काम, मना है। बाद लोग खाना काबा की दीवारों को छूना चाहते हैं, देखिए एक मोहब्बत के अंदर आप छू लें, एक आपके दिल में आती ख्वाहिश और बात है, लेकिन इसको सुन्नत समझना या इसको नेकी समझना, इससे बचना। हाँ लिपट सकते हैं, और जो मुझे नहीं लगता कि इस दौर में, इन दिनों में खासतौर पर मुमकिन हो औरतों के लिए, वो मुल्तसिम की जगह, बाब काबा और मुकाम इब्राहिम, हिजर अस्वद के जो बीच की जगह है उसके बीच की जगह मुल्तसिम है कि वहां चिपक के अगर दुआएं मांगी जाए तो कबूल होती हैं। मौका मिल जाए तो ले लें, नहीं मिलता तो छोड़ दें, अल्लाह ताला नियतों पे आपको देगा। लेकिन ये सोच के जाना और फिर आके कहानियां बना बना के सुनाना, मैंने हर चक्कर में गुस्सा लिया और मैं ये हुई और वो, यकीन करें वहां जाने तक चली जाती हैं। औरतें गैर मर्दों के हाथों में उछल रही होती हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हाथ लगाना, नहीं लगा सके ठीक है, नहीं लगा सकते तो अल्लाह ताला नियत पे आपको दे देगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि वहां जब आप खाना काबा के दरवाजा है उसको देखते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे देखे। मैं तो जब कोई दुआ मांगू तो मेरे जहन में वही दरवाजा आ जाता है, और इंसान अपने आप को बड़ा भिखारी समझता है कि अल्लाह तेरे दर के भिखारी है ना, तड़प के बेचैनी से अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे हम पे। मुकाम इब्राहिम को देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करें, क्या नेकी थी कि अल्लाह ताला ने उनके कदमों के निशान तक महफूज कर दिए। और सच है तो अल्लाह के रास्ते में खलूस से काम करता है ना, अल्लाह ताला उसके कदमों के निशान भी जमा कर देता है, उसको लिख देता है कि इसको भी लोग देख के हिदायत लेंगे। फिर इसी तरह आप देखें हिजर अस्वद, लोगों के गुनाहों की वजह से हदीस में आता है कि स्याह हो गया, ये सफेद था, जन्नत का पत्थर था, अल्लाह ताला ने यानी उसको भी एक निशानी रखा। कोशिश करें कि इन चीजों में से रूहानियत ढूंढे, ये जन्नत से आया कैसी होगी जन्नत। इसी तरह आप देखें कि जमजम पीते हुए हशर की गर्मी को याद रखें, हौज कौसर के पानी पीने की तमन्ना करें कि अल्लाह आज तूने जमजम पिलाया तो वहां नबी के हाथ से हौज कौसर से पानी पिलाना। जमजम के लिए दुआ है कि अल माओ जमजम लिमा शुरी बना, जिस नियत से पिया जाए वही काम हो जाता है। पानी के लिए पियेंगे तो प्यास बुझेगी, खाने के लिए पियेंगे तो भूख खत्म होगी, और तमन्नाएं करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को ना भूलिएगा जमजम पीते हुए, क्या वो औरत थी, क्या कुर्बानियां थी। आप देखें वो बीबी हाजरा के जो चक्कर थे ना वहां, वो एक बच्चे की प्यास नहीं थी सिर्फ, वो एक उम्मत की प्यास थी। उस औरत ने जो कुर्बानी दी वो सिर्फ अपने बच्चे की हद तक नहीं, आने वाली नस्लों तक के लिए वो कुर्बानी थी कि लोग किस तरीके से यानी हिदायत का पानी पियेंगे इस जगह आके। फिर इसी तरह आप जब दो नफिल पढ़ेंगे तवाफ करने के बाद, उसके बाद जमजम कसरत से पीना ख्वाहिश करनी चाहिए, जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके पीछे मुकाम इब्राहिम के, नहीं मिलती तो कहीं भी पढ़ लें, कहीं भी झगड़ा ना करें। औरतों की जो मखसूस जगह है कोशिश करें उसी में रहें तो ज्यादा आपको सहूलत रहेगी, उसमें बेपर्दगी से बचेंगे और आपकी बारियां होती हैं, पानी जमजम पीना और ये सारी चीजें सहूलत से हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आप देखिए कि जब صفا اور مروہ کی سعی. اس کو تو بعض لوگ میں نے دیکھا کہ واقعی جیسے واک کرتے ہیں نا اس طرح لیتے ہیں. واک نہیں کرنی, سعی, لفظ سعی پہ کوشش کرنی ہے. کیا میری زندگی میں اتنی سعی ہے اللہ کو راضی کرنے کی؟ کیا اتنی کوشش کرتی ہوں اپنی جگہ پہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی؟ ایک ایک قدم پہ اپنے یا رب سے باتیں کرنا سیکھیں. اگر آپ اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں نا تو آپ نے سمجھے کہ حج کا کام پورا کر دیا. کسی جگہ اپنے اوپر تھکن کو, پریشانی کو اپنے آپ کے اوپر اوور کرنے کے لیے روحانیت کو نہیں مجروح کرنا. کئی کئی طواف کر رہے ہیں, جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ باندھ کے آ رہے ہیں عمرے کرنے, کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں چند عمرے کیے, ایک حج کیا, تو ہم کیوں اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہیں؟ تو لہٰذا جہاں بھی رہیں وہاں اس طرح رہیں. پھر اسی طرح صحیح کے بعد جب بالوں کی لٹ کٹتی ہے, بعض لوگوں کو اپنے بال بڑے عزیز ہوتے ہیں, قربانی سیکھنی ہے اس سے کہ آج اگر اللہ کے حکم سے بال دیے تو کل کچھ اور بھی دینا پڑے تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں. اور خاص طور میں پھر وہ تین دن جو انسان حج کے دنوں میں احرام باندھ کے منا اور مصطلفہ کے, وہ دن تو ایک ہی چیز سکھاتے ہیں, رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا, رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. جہاں جگہ ملتی ہے جو ملتا ہے, یعنی صبر سیکھتا ہے انسان. وہاں باتوں سے اجتناب کریں. بعض دفعہ جب لوگ گروپس میں جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, ان چیزوں سے بچیں. بعض لوگ صرف اس لیے جھگڑتے رہتے ہیں کھانا اچھا نہیں ملا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی بھوک کو یاد کر لیجیے گا. کئی دفعہ ہیک دیتی ہوئی چکنائی تیل استعمال کرنا پڑتا تھا, بو آ رہی ہوتی تھی لیکن پھر بھی استعمال کرتے تھے کیونکہ پتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اجر کو ضائع نہیں کرنا. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ حج کے ساتھ کچھ نہ کچھ علم کو باندھ لیں. کوئی ایسی کتاب اپنی زبان کی ساتھ لے جائیں. وہاں ہر وقت عبادت, نفل, طواف کے بعد بھی پھر انسان کا دل چاہتا ہے نا کچھ اور کریں, تو اپنے لیے خود پسند کریں. جو چیز میں ریکمینڈ کرتی ہوں جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ ارحیکم مختوم سیرت کی کتاب ہے. جب مکہ میں ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور شروع سے شروع کریں, مدینہ میں جائیں تو وہ مدینہ کا دور پڑھیں. لمبے لمبے سفر آپ کو بیچ میں کرنے پڑتے ہیں کئی گھنٹوں کے, تو وہ بک ریڈنگ کریں اور اس ماحول کو محسوس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے تب کیسا ہوتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو قریب کرے گی. قصص الانبیاء لے جائیں جس میں یعنی انبیاء کرام کے قصے ہیں, خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا. اسی طرح اگر کہیں یہاں کوئی کلاس لیتے تھے تو میں تو اس کے لیے یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ کے جو دو ہفتے تین ہفتے چھٹ رہے ہیں آپ ان دنوں کی ریکارڈنگ کیسٹ یا سی ڈی یا اگر کہیں سے آپ کو وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ اپنے MP3 میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں. چھوٹے سے لوگ یہ بھی آسانی سے کرتے ہیں, کیسٹ اتنی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اپنے آئی پوڈ میں, اپنی ٹریولنگ میں یہاں سے لے کے اپنی نوٹ بک ساتھ لے جائیں جو جس میں نوٹس لیتے ہیں, تو اپنا روز کا ایک ایک لیسن کرتے رہیں. روٹین نہ بدلنے دیں. میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ ہم حج کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں پھر آتے ہی نہیں, پھر پلٹ ہی جاتے ہیں. اور پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب گناہ تو معاف ہو ہی گئے, اب اگلے سال پھر کر لیں گے. ایسا نہیں کرنا, کبھی اپنی روٹین نہ خراب کریں اور نئے سے نئے طریقے کی نیکیاں کریں. اور وہاں جا کے بعض لوگ بڑی اعلیٰ ہوٹلوں میں رہنا اور اس کو پسند کرتے ہیں, دیکھیں کہ یہ چھوڑیں گے تو آخرت یاد آئے گی نا. اور ہر ہر لمحے میں آخرت کو یاد کرنا ہے, عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے میدان محشر کو یاد کرنا ہے. اور اس دن جو نفسی نفسی ہوتی ہے اور جو اس دن گرمی ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ جان حلق کو آ گئی. اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ کو کتنا سجا دیا, اتنے ریسٹ رومز ہیں, لیکن منا میں ابھی بھی اس طرح کے انتظام نہیں. کیوں؟ کہ لوگوں کو اصل وہ روحانیت رہے کہ کیسے یعنی یہ سب کچھ ہوگا. میرا دل تلا ہمیں جو بھی بات کہیں سنیں اس پہ عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
لا الحمد والنعمة لك والملك لا لا